दर्शन की आवाज में तुलसीदास द्वारा रचित दोहा 1 से 15 भरत चरित्र का वाचन और व्याख्या सुनिए। तुलसीदास भरत चरित्र। मलिन बसन बिबरन विकल कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन मानहु हनि तुषार। भरत ही देख मातु उठ जाय ढाई, मूर्छित अवन परी झई आई। देखत भरत बिकुल भय भारी, पड़े चरण तन दास बिसारी। मातु तात कह देहि दिखाई, कह सिया रामु लखनु देव भाई। कई कई कत जनमी जग माझा, जो जनमी तय भय काहे बना बाझा। कुल कल कूज ही जन्मे उ मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोट भुवन मोहि सरसी अभागी, गति असि तोरी मातु जही लागी। पितु सुरपुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरथ हे तू। ढिग मोहि भयो बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दुखन भागी। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभार। लिए उठाए लगाए उर, लोचन मोचति बार। संदर्भ: प्रस्तुत दोहा रामचरित मानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। इसमें दशरथ मरण और राम वनगमन से शोकाकुल कौशल्या जी की करुण दशा का चित्रण किया गया है। प्रसंग: भरत जी ननिहाल से लौटकर जब केकई से दशरथ मरण एवं राम वनगमन का समाचार सुनते तो अत्यंत दुखित होकर केकई को बुरा भला कहने के पश्चात शत्रुघ्न सहित माता कौशल्या के पास जाते हैं। उसमें उसी समय का वर्णन किया गया है। व्याख्या: कौशल्या जी के कपड़े मैले हैं, रंग बदल गया है, दुख के बोझ से शरीर छीन हो गया है। मालूम पड़ता है कि जंगल में सुवर्ण के समान पीले रंग की सुंदर लता पर पाला पड़ गया है। श्री कौशल्या जी भरत को देखकर उठ रोड़ी, बेहोशी आने के कारण गिर पड़ी। यह देखकर भरत जी बहुत दुखी हुई और शरीर की सुधि भुलाकर उनके पैरों पर गिर पड़े। हे माता, पिताजी कहाँ है, मुझे दिखाओ। और सीता जी तथा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कहाँ है। इस संसार के बीच के कई ने जन्म क्यों लिया, यदि जन्मी तो बांझ क्यों ना हुई, जिसने कि मेरे समान कुल कलंकी द्रोह करने वाले पुत्र को जन्म दिया। हे माता जी, संसार में मेरे समान कौन अभागा है जिसके कारण आपकी यह दशा हुई। पिताजी सुरधाम को सिधारे, रघुवंश में श्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र भी बन को गए। इन सब अनर्थों का कारण केवल मैं हूँ। मुझे धिक्कार है कि मैं बांस के जंगल के लिए अग्नि रूप हुआ, कि जो जलन दुख और पाप का भागी हुआ। श्री कौशल्या जी भरत के मीठे वचन को सुन संभल उठी और उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। काव्य सौंदर्य: पहला अलंकार, बसन बिवरण बिकल और बड़ बेली बन में अनुप्रास मलिन बसन से तुषारू में उत्प्रेक्षा। बंधव्य स्त्री के लिए भारी अभिशाप है। भरत कहते हैं केकई बांझ क्यों ना रही, उसके बांझ रहने से भरत की उत्पत्ति न होती, फिर दशरथ मरण और राम वनवास का प्रश्न ही न उठता। सरल सुभाए माय ही अलाए, अति हित मानहु राम फिर आए। भेटो बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसनेहु न हृदय समाई। देखी सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस को काहे न होई। माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पोछ मृदु बचन उचा। अजहु बच्चे बलि धीरज उधरहु, कुसुमऊ सुमझ शोक परिहरहु। जानी मान हुई हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। काहू दोष दोहु जनिताता, भामोहि सब विधि बाम विधाता। जो इतहु दुख माहि जिनावा, जियावा अजहु को जान कता ही भावा। पितु आय सुभूषण बसन, तात तजे रघुबीर। बिस्मऊ हरसु न हृदय कछु, पहिरे बल कचीर। व्याख्या: कौशल्या जी ने भरत को छाती से लगा लिया, मानो श्री रामचंद्र जी जंगल से लौटाए। पुनः शत्रुघ्न से उससे भेंट की और उस समय का शोक और प्रेम उनके हृदय में समा न सका। कौशल्या जी को देखकर सब लोग यही कहते हैं कि भला श्री राम जी की माता ऐसी क्यों न हो। माता ने भरत को गोद में बैठा लिया और आंसू पोंछकर वह मीठी वाणी में बोली, हे वत्स, तुम धैर्य धारण करो, बुरा समय समझकर सोच को त्याग दो। काल कर्म की गति को निश्चय समझकर जी में हानि अथवा ग्लानि न करो। हे तात, किसी को दोषी न बनाओ, मेरे लिए तो ब्रह्मा टेढ़े हो गए। यदि ऐसे दुख में मैं भी जी गई तो पता नहीं समय अभी क्या दिखलाने वाला है। हे भरत, पिताजी की आज्ञा से श्री रामचंद्र ने सब गहने व कपड़े उतार दिए और मन में आश्चर्य अथवा प्रसन्नता कुछ नहीं की, उन्होंने केले की छाल धारण कर ली। काव्य सौंदर्य: अलंकार, सरल सुभाय, काल कर्म में छेकानुप्रास, विधि बाम विधाता में वृत्यनुप्रास। दूसरा, काल कर्म गति अघटित जानी, वाल्मीकि रामायण में आया है कालो ही द्विता क्रम, लोकोक्ति भी है काल बलवान होता है। तीसरा, राम जब स्वयं उदारता के सिद्ध हुए तो उनकी माता कौशल्या की उदारता का कहना ही क्या, क्योंकि कहा है कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मुख प्रसन्न मन रंग नरोसु, सब कर सब विधि करी परितोसु। चले बिपिन सुनि सिय संग लाली लागी रही न राम चरण अनुरागी सुनि तहि लखुन उचले उठि साथा रही न जतन किए रघुनाथा जब रघुपति सब ही सिरु नाई चले संग सिय अरु लघु भाई राम लखनु सिय बन ही सिधाए गयउ न संग न प्राण पठाए यहु सबु भाव इन आखिन आगे तउ न तजा तनु जीव अभागे मोहिन लाज निज नेहु निहारी राम सरिस सुतमय मतिहारी जियउ मरई भल भूपति जाना मोर हृदय सल तकुलिस समाना कौसल्या के वचन सुनी भरत सहित निवास व्याकुल विलपत राजगृहु मानहु शोक निवास। व्याख्या मुख पर प्रसन्नता थी मन में तो न प्रेम था न द्वेष हर प्रकार से सब लोगों को संतुष्ट कर वे मन को चलो यह सुनकर जानकी भी साथ गई श्री राम जी के चरणों में प्रेम के कारण रुकी रही। श्री राम जी का वनगमन सुनकर लक्ष्मण भी उनके साथ लगे और ना रुके फिर श्री राम जी सबको प्रणाम कर सीता और लक्ष्मण के साथ वन को चल दिए। श्री राम जी लक्ष्मण और सीता वन गए ना तो मैं उनके साथ गई और ना ही अपने प्राणों को भेजी। यह सारी घटना मेरे नेत्र के सामने हुई पर अभागा जी इस देह को नहीं छोड़ता मुझको अपना प्रेम देखकर लज्जा नहीं आती कि श्री राम जी ऐसा पुत्र और मेरी सदृश माता जीने और मरने के रहस्य को तो राजा समझते थे जो श्री राम के जाने पर अपने प्राण त्याग दिए। श्री कौशल्या महारानी का वह वचन सुनकर भरत जी के सहित रानीवास और राजा के घर के नौकर जाकर व्याकुल हो गए मालूम पड़ता था कि वहाँ शोक का घर बन गया। काव्य सौंदर्य पहला अलंकार तऊना तजा तनु में वृत्यानुप्रास दूसरा मुख प्रसन्न का तात्पर्य है मुख का सहज स्वाभाविक शांत भाव जो दुख या सुख से अप्रभावित हो। बिलपहि बिकल भरत दो भाई कौसल्या लिए हृदय लगाई भांति अनेक भरत समुझाए कही विवेक मैं बचन सुहाय भरत हु मातु सकल समुझाई कही पुराण अस्तुति कथा सुनाई छल विहीन सुचि सरल सुमानी बोले भरत जोड़ जुग पानी जे अघ मातु पिता सुत मारे गाई गोठ महिषासुर पुर जारे हे जे अघतिय बालक बद किन्हे मीत मही पति माहुर दिन्हे जे पाठक उप पाठक अहि करम बचन मन भव कवि कहि ते पाठक मोहि होहु विधाता जो यह होई मोर मत्ता माता जे परिहरि रघुपति चरण भजहि भूत गण घोर तिन्ह कई गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोर। व्याख्या भरत और शत्रुघ्न व्याकुल होकर रोने लगे उस समय कौशल्या जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और अनेक तरह के ज्ञान और विचार से भरे वचन कहकर भरत जी को समझाने लगी। इसके बाद भरत जी ने भी वेद और पुराण की कथाओं को कहकर सब माताओं को समझाया और वे दोनों हाथ जोड़कर छल रही सुंदर और पवित्र वचन बोले हे माता जो पाप माता पिता और गुरु के मारने से होता है जो पाप गौशाला को जलाने से होता है जो स्त्री और बालक के मारने से होता है और जो राजा को जहर देने से होता है संसार के जितने बड़े बड़े और छोटे छोटे पाप होते हैं जो मन वचन और कर्म से होते जिसे पंडितों ने कहा हे माता वे पाप हमें लगे यदि श्री राम जी के वन जाने में मेरी राय हो जो लोग शिव और विष्णु के पैरों को छोड़कर पिशाच के अथवा बुरे लोगों और अधर्मियों की भक्ति करते हैं उन्हें जो फल होता है विधाता वही फल मुझे दे यदि मेरी राय श्री राम जी के वन जाने में हो। काव्य सौंदर्य पहला अलंकार बिलपही बिकल छेकानुप्रास और सुचि सरल सुबानी में वृत्यानुप्रास दूसरा मनुष्य की आस्था के तीन स्थल हैं वेद पुराण शास्त्र और लोक। भरत ने माँ के उद्बोधन के लिए इन तीनों का सहारा लिया है एक में से एक बढ़कर पाठकों को अपने सिर लेकर भरत शपथ करते हैं इससे उनके चरित्र की उज्ज्वलता पर प्रकाश पड़ता है। भूतादि की उपासना से जो आज भी लोक में प्रचलित है महापाठक है। बेचही बेदु धर्म दुइले ही पिसुन पड़ाए पाप कहि देही कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्व विरोधी लोभि लंपट लो लुपचा जेता कहि पर धनु पर दौड़ा अपामौ मैं तिनके गति घोड़ा जो जन नहीं एहु संग मत मोड़ा जे नहीं साधु नंग संग अनुरागे परमारथ पथ विमुख अभागे जे नर भजई हरि नर तनुपाई जिन्हन हरि हर सुज सुतुहाई तजी अस्तुति पंथ बाम पथ चलही बंचक बिरचि बेसु जगु छलै तिन पई तिन कई गति मोई शंकर देहु जननी जो एहु जानौ भेउ मातु भरत के बचन सुन साचे सरल सुभाय कहते राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन काय। व्याख्या जो वेद की बिक्री करते हैं रुपया लेकर कन्या का विवाह करते हैं जो छली और टेढ़े हैं छल ही जिन्हें प्रिय है और जो वेद की निंदा करते हैं, सारे संसार की बुराई में लगे रहते हैं, जो लालची, गुंडे, चंचल और लबाड़ हैं, जो दूसरों के रुपये और स्त्री को बुरी दृष्टि से देखते हैं। हे माता जी, यदि उसमें मेरी राय हो तो उन्हीं लोगों का सा बुरा फल मुझे मिले, जो अभागे सज्जन के साथ भी मन नहीं लगाते, जो परमार्थ के मार्ग से एकदम उल्टे चलते, जो मनुष्य का देह पाकर भी भगवान का भजन नहीं करते, जो वेद के रास्ते को छोड़कर वाम मार्ग अथवा उल्टे मार्ग से चलते हैं और जगत को धोखा देते हैं, यदि यह भेद मैं जानता हूँ तो शिवजी अपने गति मुझको दे। इस भांति सच्चे और सरल तथा स्वभाव से ही सीधे भरत जी के वचन सुनकर श्री कौशल्या जी बोली, तात, तुम सर्वदा मन, वचन और देह से राम जी के प्यारे हो। काव्य सौंदर्य पहला, अलंकार कपटी से क्रोधी में वित्तानुप्रास। दूसरा, वेद ज्ञान और धर्म बेचना महापाप है। इन पंक्तियों से तुलसीदास सामाजिक दशा पर भी प्रकाश पड़ता है। तुलसी ने सामाजिक और धार्मिक बुराइयों में उच्छेद के लिए मानस जैसे ग्रंथ की रचना की। तीसरा, उपासना की दो पद्धतियां हैं, दक्षिण और वाम। दक्षिण मार्ग वेदोक्त मार्ग और वाम मार्ग कुत्सित। चौथा, वंचक विरचि वेश जग छलही, संसार में ढोंगी लोगों की कमी नहीं है, ऐसे ही लोगों की प्रति कहा है। क्वचित छयवाह क्वचित छक्ता, सभा मध्ये चौ वैष्णवा, नाना रूप धरा कौला, विचरंती मही तले। राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपत ही प्राण हुते प्यारे, विधु विष चवई अस्तवई हिमुआगी, होई बारी चढ़ बारी बिरागी, भय ज्ञान बड़ु मितई न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो, मत तुम्हारी यहु जो जग कही, सो सपने हु सुख सुगति न लहै, अस कही मातु भरत ही लाए, थन पैस अस्त्रव ही नयन जल छाए, करत बिलाप बहुत एहि भांति, बैठ ही बीती गई सब राती, बाम देव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुला, मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदे, तात हृदय धीरज धरहु करहु, जो अवसर आजु उठे भरत गुण बचन सुनी, करण कहे सब साजू। व्याख्या, हे तात, तुम्हारे लिए राम जी प्राणों से प्यारे हो और तुम उनके लिए प्राणों से प्यारे हो। चाहे चंद्रमा से विष टपकने लगे, बर्फ से आग निकले और मछलियां जल से विराग ले ले, और चाहे ज्ञान होने पर मोह का नाश न हो, परंतु हे भरत, तुम राम के विरुद्ध नहीं हो सकते। जगत में जो कोई इस कार्य में तुम्हारी सम्मति कहेगा, वह स्वप्न में भी सुख नहीं पाएगा। यह कहकर कौशल्या जी ने भरत को गले से लगा लिया, उनके स्तनों में से दूध बहने लगा और आंखों में आंसू आ गया। इस प्रकार विलाप करते हुए बैठे ही बैठे सारी रात्रि बीत गई। इसके पश्चात वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए और उन्होंने सब महाजनों को भी बुलाया। वे ऋषि बहुत प्रकार से भरत जी को परामर्श कर उपदेश देने लगे कि हे तात, मन में धीरज रखिए, वह काज कीजिए जो आज करना आवश्यक हो। तब गुरु जी की बात सुनकर भरत जी उठ खड़े हुए और गुरु ने उन्हें सब कार्य करने को कहा। काव्य सौंदर्य, राम वनवास के संबंध में भरत की सम्मति थी, ऐसे सोचना भी जन्म बिगाड़ना है। स्वयं कौशल्या ऐसा कहकर भरत को सर्वथा निष्कलंक प्रमाणित करती है। दूसरा, थन पय से छाए का साम्य देखे, आंचल में दूध और आंखों में पानी। गुप्त जी की यह पंक्ति इसकी व्याख्या करती है। कौशल्या के अश्रु भरत के प्रति सहानुभूति और उसका दुग्ध वात्सल्य भाव का द्योतक है। नृप तनु मेद बिहित अनहवावा, परम विचित्र विमानु बनावा, गही पद भरत मातु सम साखी, रही राम दर्शन अभिलाषी, चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजु तीर चिचिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई, एहि विधि दाह क्रिया सब किन्धी, विधिवत नहाय तिलांजलु दिन्धी, सीधी सुमृति सब वेद पुराना, किन्न भरत दस गात बिधाना, जहाँ जस मुनि बड़ आय सुदिन्धा, तह तस सहस भांति सबु किन्धा, भय विशुद्ध दिए समुधाना, धेनु बाज गज बाहन नाना, सिंहासन भूषण बसन अन्न धर निधन धाम, दिए भरत लही भूमि सुर भे परिपूरन काम। व्याख्या, भरत जी ने राजा के मृतक देह को स्नान कराया और खूब सुंदर विमान बनवाया। माताएं जलना चाहती थी परंतु भरत जी ने समझा बुझा कर रोक दिया। इसके पश्चात बहुत अधिक सुगंध वाले चंदन और अगर के बहुत से भार मांग आए। सरयू नदी के किनारे पर सुगंधित चिट्टा बनाई गई जो मानो स्वर्ग के लिए सुंदर सीढ़ी है। इस प्रकार जलाने की क्रिया भरत जी ने समाप्त किया, विधिपूर्वक स्नान कर तिलांजलि दिया। फिर उन्होंने वेद और पुराण का विचार कर दस गात्र की क्रिया की। जहाँ जिस प्रकार गुरु जी ने आज्ञा दी, वहीं हजारों प्रकार के भरत जी ने इस कार्य को किया और अनेक गाय घोड़े और हाथी और सवारी दान देकर पवित्र हुए। इसके पश्चात जी भरत जी ने विप्रों को सिंहासन आभूषण वस्त्र अन्न पृथ्वी संपत्ति और घर का दान दिया, जिन्हें पाकर वे संतुष्ट हो गए। काव्य सौंदर्य, अलंकार जन सुरपुर से सुहाई में उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा तिलांजलि, दशगात्र और दान, ये सब मृतक संस्कार के विविध सोपान है। हिंदू धर्म में प्रेत शुद्धि आवश्यक है, अन्यथा जीवात्मा प्रेत बनकर भटकती रहती है। तुलसी अवसरानुकूल शास्त्रीय और लौकिक मर्यादाओं के प्रति अपनी दृढ़ आस्था प्रकट करते रहते हैं। पितु हित भरत की नि जसी करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी, सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए, बैठे राज सभा सब जाई, पथे बोली भरत दो भाई, भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म बचन ऊंचा, प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कत कई कुटिल किन्न जसी करनी, भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जे ही तनु परिहरि प्रेम निबाहा, कहत राम गुणशील सुभाओ, सजल नयन पुल के मुनि राउ, बहुरी लखन सिया प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभु जीवन मरण, जसु अपजस विधिहात। व्याख्या। पिता के कल्याण के लिए भरत जी ने जिन कार्यों को किया वह लाखों मुख से नहीं कहा जा सकता। फिर सुंदर दिन देखकर मुनि वशिष्ठ जी वहां आए और सब मंत्री और महाजनों को बुला लिए। सब मुनिराज सभा में जाकर बैठे और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न को बुला लिया। वशिष्ठ जी भरत को समीप में बैठा कर नीति और धर्म से युक्त वाणी बोले। पहले केकई ने जो टेढ़ा कार्य किया था उसको मुनि कह सुनाए। बाद में जो महाराज दशरथ जी ने देह त्याग कर प्रीति को निभाया, उनके धर्म व्रत और सच्चाई की प्रशंसा की। श्री राम जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी को रोमांच हो गया। वशिष्ठ जी बिलख कर बोले, हे भरत, होनहार बलवान होता है, उन्नति हानि लाभ और मरना, यश और अपयश सब विधाता के हाथ में है। काव्य सौंदर्य। अलंकार केकई कुटिल किन्ही में वृत्यानुप्रास। दूसरा हानि लाभ से हाथ, यह एक सुक्ति है। ऐसी सुक्तियां तुलसी साहित्य में पद पदे मिलती रहती है। अस विचार के ही देव दोसु, व्यर्थ काही पर की जय रोसु, तात विचारु करहु मन माही, सोच जो गुदसरथ निपुनाही, सोच विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लय लीना, सोच नृपति जो जीति न जाना, जेहिना प्रजा प्रिय प्राण समाना, सोच बयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु, सोच शूद्र विप्र अवमानी, मुखरु मान प्रिय ज्ञान गुमानी, सोच पुनि पति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, सोच बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं गुण आयसु अनुसरई, सोच गृही जो महो बस करई करम पथ त्याग, सोच जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। व्याख्या। हे भरत जी, ऐसा समझकर किसे दोषी ठहराया जाए, झूठे ही किसी पर क्रोध क्यों किया जाए। हे तात, आप मन में ही विचार करें तो महाराज दशरथ शोक के योग्य नहीं रहे, जो ब्राह्मण वेद नहीं जानता और जो अपने धर्म के त्याग विषयों में मन लगाता, और जो राजा राजनीति नहीं जानता और प्रजा को प्राण के समान नहीं समझता, वह सोचने योग्य है। जो वैसे कंजूस हो, अतिथि की सेवा न करे, ना महादेव जी की भक्ति करे, जो शूद्र होकर ब्राह्मण का अपमान करे, बहुत बोलने और ज्ञान का घमंड करने, वह सोचने योग्य है। पुनः पति को धोखा देने वाली उस स्त्री को सोचना चाहिए जो कुटिल और झगड़ालू है, और जो स्वतंत्र रहने वाली है। फिर वह ब्रह्मचारी सोचनीय है जो व्रत छोड़कर गुरु की आज्ञा नहीं मानता, जो गृहस्थ मोह में फंसकर धर्म के रास्ते छोड़ दे, वह सोचने के योग्य है। जो यति साधु विचार और वैराग्य से हीन प्रपंच लगा रहता है, उसको सोचना करना चाहिए। विशेष शोक किसे करना चाहिए, इस संदर्भ में लंबी उद्धरणी प्रस्तुत करते हुए तुलसी ने नीति शास्त्र का एक गुटका ही प्रस्तुत कर दिया। बैसानक सोई सोचई जोगु, टपु बिहाई जेहि भावई भोगु, सोचई पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुण बंधु विरोधी, सब मिरी सोचई पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी, सोचनीय सब ही विधि सोई, सो न जो न छारि छलु हरि जन मुहोई, सोच नहीं नहि कोसल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाउ, भय अहि न होनी हारा, भृपु भूप भरत जस पिता तुम्हारा, विधि हरे हरु सुरिपति दिसि न था, बर नहीं सब दशरथ सुन गाथा, कहूँ तात कही भांति को, करहि बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरसि सुजन सुचि जासु। व्याख्या। यदि वानप्रस्थी तप छोड़कर भोग में मन रखे और चुगलखोर तथा जो बिना कारण ही क्रोध करता है, और जो माता पिता गुरु और भाइयों से द्वेष रखता है, वह सोचनीय है। जो शरीर का पोषक और दया से हीन है, दूसरे की बुराई करता है, जो लोभी है और पराये धन का स्वामी बन बैठा हो, वह सोचने योग्य है। जो छल को छोड़कर भगवान का भजन न करे, वह सर्वदा सोचनीय है। परंतु जिस प्रकार महाराजा दशरथ का प्रताप चौदहों भवन में फैला है, वह सोच के योग्य नहीं है। हे भरत, जैसे आपके पिताजी थे वैसे ही न कोई राजा हुआ न ही होने वाला है, जिसके गुण का बखान ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र दिक्पाल भी करते। हे तात, भला कहो तो सही, महाराजा दशरथ की प्रशंसा कौन नहीं कर सकता, जिसके राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और तुम्हारे जैसे पवित्र पुत्र हुए हैं। विशेष पर अपकारी पापियों में सिरमौर कर बताया गया है, महाभारत के अनुसार पापाय परिणाम। दूसरा, भगवान की भक्ति न करने वाला आत्महत्या है, क्योंकि वह स्वात्म स्वरूप परमेश्वर से विमुख है। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादी बिसादु करे उतही लागी, एहु सुनी समझु सोचि परिहरऊँ, सिर धरि राज रजाय सुकरहूँ, राय राज पदु तुम कहूँ दिन्हा, पिता बचनु फुर चाहे उ किन्हा, तजे राम उजे ही बचन ही लागी, तनु पर हरे उ राम बिरहागी, नृपहु बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण, करहूँ तात पितु प्रचन प्रमाण, करहूँ शीश धरि धूप भूप ब्रजाई, हाय तुम कह सब भांति भलाई, परसु राम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी, तनय जना जजाति ही जो बनु देउ, पितु अज्ञा अजसु न भयउ, अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बयन, ते भाजन सुख सृजस के बसहि अमर पति अयन। व्याख्या, हे भरत, सब प्रकार से राजा दशरथ बड़े भाग्यवान थे, अनेक उनके विषय में शोक करना व्यर्थ है, यह जानकर शोक छोड़ दीजिए कि राज्य की आज्ञा सिर पर रखकर राज्य कीजिए। महाराज ने आपको राज्य दे दिया है, पिता की वाणी सच्ची करनी चाहिए। महाराज दशरथ जी ने बाती के हेतु राम को छोड़ दिया और उन्हीं के बिछोह रूप आग में अपने देह की आहुति दे दी। महाराज को बात प्यारी थी न कि प्राण। हे तात, उनकी बात मानकर आप उनका प्रिय कीजिए। आप महाराज की आज्ञा को सिर पर रखकर उसको पालिए, इसी में आपकी सब प्रकार से भलाई है। सारा संसार यह जानता है कि परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा मानकर माता को मार डाला। पिता की आज्ञा होने के कारण न तो उन्हें पाप हुआ और न ही अपयश। जो अच्छा या बुरा कुछ भी न विचार कर पिता की आज्ञा को पालते हैं, वे आनंद और सुंदर यश को पाते हैं और स्वर्ग में वास करते हैं। काव्य सौंदर्य, पहला अलंकार, बादी बिसादु और राजर जायसु में छेकानुप्रास। दूसरा, नृपही बचन से प्राण, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई, अपने वचन की रक्षा के लिए दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तीसरा, परशुराम भयउ, वे परशुराम और याति तनय की प्रतिभक्ति से संबंधित सुप्रसिद्ध पौराणिक आख्यानों का संदर्भ है। अवश्य नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु, सुरपुर नृपु पाई परितोषु, तुम कह सुकृत सुजसु नहीं दोषु, वेद विदित सम्मंत सबहिका, जेहु पितु देसो पावई टीका, करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन बचन हित जानी, सुनिल सुख लाह राम बदेही, अनुचित कह बन पंडित के, कौसल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होइ सुकारी, मरम तुम्हार राम कर जानही, सो सब विधु तुम सन भल मानही, सौंपहु राज राम के आए, सेवा करे उसने सुहा, कीजिए गुरु आया सुअवसी, कई सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित जस, तस तब करम बहोर। व्याख्या, राजा की आज्ञा अवश्य सत्य कीजिए, प्रजा की रक्षा कीजिए और शोक का परित्याग कीजिए, इससे राजा स्वर्ग में संतुष्ट होंगे और तुम्हें दोष न लगकर सुंदर यश मिलेगा। पिता श्री से राज्य दे, वही अधिकारी है, यह बात वेद में लिखी है और सर्वसम्मत है। मेरा वचन हितकर मानकर ग्लानी को छोड़कर राज्य कीजिए। यह सुनकर श्री राम जी और जानकी जी को आनंद होगा कि कोई भी पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। प्रजा के सुख से कौशल्या आदि सभी माताएं सुखी होंगी। माताएं श्री राम जी से आपकी प्रीति को जानेंगी, वे आपसे हर प्रकार सुखी होंगी। श्री रामचंद्र जी के आने पर राज्य लौटाकर प्रेम सहित उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कहते हैं कि गुरु की आज्ञा अवश्य कीजिए, श्री रामचंद्र जी के आने पर जैसा उचित समझिएगा वैसा कीजिएगा। काव्य सौंदर्य, पहला अलंकार, मानहु मोर और स्नेह सुहाय में छेकानुप्रास। दूसरा, अनुचित कहबन पंडित के हो, यह सुक्ति के रूप में प्रयुक्त है। कौशल्या धरि धीरज कहे, पूत पथ्य गुरु आयसु अहि, सो आदरियु करेउ हित मान, तजी विषादु काल गति जानी, बन रघुपति सुरपति नरनाहु, तुम एहि भांति तात कदराहु, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा, लखि विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरउ मातु बलि जाई, सिर धरि गुरु आयासु अनुसरहु, प्रजा पालीपुर जन दुख हरहु, गुरु के बचन सचिव अभिनंदुने सुने भरत ही अहित जनु चंदुने, सानी सरल रस मातु बानी, सुनई भरतु व्याकुल भये, लोचन सरोरु स्रवत खी सिंचत बिरह उर अंकुर नये, सोद सा देखत समत तेही, बिसरी समय सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर शिव सह स्नेह की, भरत कमल कर जोड़ी धीर, धुरंधर धीर धरी, बचन काम जनु मोरी, देत उचित उत्तर सबही। व्याख्या। धीरज धारण करके कौशल्या बोली, हे पुत्र, मुनि का वचन सुंदर औषधि है, उसे लाभकारी मानकर आदर के साथ करो और समय का प्रभाव समझकर विषाद को छोड़ दो। श्री रामचंद्र जी वन में, राजा स्वर्ग में, और तुम इस प्रकार कायरता प्रकट करते हो। कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के, हे पुत्र, तुम ही एक सहारा हो। हे भरत, विधाता को टेढ़ा और समय की कठिनता को देखकर धीरज धरो। गुरु की आज्ञा सिर पर रख उनका अनुसरण करो और नगर के लोगों का कष्ट निवारण करो। वशिष्ठ जी की वाणी और मंत्रियों की सराहना सुनकर भरत के मन में चंदन स्पर्श के समान सुख हुआ और पुनः सील और प्रेम से पगे सीधे और रस से सने हुए माता के वचन सुने। माता की सीधी और रस में पगी हुई वाणी को सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके कमल रूपी नेत्रों में आंसू टपकने लगे, जिससे वे मन में उत्पन्न विरह के अंकुर सींचने लगे। इस समय की अवस्था को देख किसी की भी अपनी सुधि न रही। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय स्वाभाविक प्रीति की सीमा को सभी लोग सराहने लगे। इसके बाद कमल रूपी हाथों को जोड़कर धर्म में धुरंधर भरत जी धैर्य धारण कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सब लोगों को यथोचित उत्तर देने लगे। काव्य सौंदर्य। अलंकार। सराहत सकल सादर शिव में वृत्यानुप्रास, लोचन सरोरुह में रूपक। दूसरा, पद लालित्य और शब्द सौष्ठव सराहनीय है। मोहि उपदेश उदिन्ध गुरुनी का, प्रजा सचिव समन्त सब ही का, मातु उचित धरि आय सुदिन्धा, अवश्य शीर्ष धरि चाहो किन्धा, गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदौ करे उभले जानी, उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाय सिर पातक भारू, तुम तो देहु सरल सिख जो सोई, जो आचरत मोर भल होई, यद्यपि यह समुझत हऊँ नीके, तदपि होत परितोषु न जीके, अब तुम बिनय मोरी सुन लेहू, मोहि अनुहरत सिखाव अनुदेहु, उतरु देउ क्षमम अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु, पितु सुरपय सिय राम बन करन कहु मोहि राज, एहि ते जानहु मोर हित के आपन बर काज। व्याख्या। गुरु ने मुझे अच्छा उपदेश दिया और प्रजा मंत्री सभी की राय है, माता की भी ठीक आज्ञा प्राप्त हुई और मैं भी आज्ञा को सिर पर रखकर अवश्य करना चाहता हूँ। गुरु, पिता, माता और स्वामी का हितकारक वचन सुनकर उसे ठीक समझकर प्रसन्न मन से करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करें तो धर्म चला जाता है और सिर पर पाप भी लग जाता है। आप लोग तो ऐसी ही शिक्षा दे रहे हैं जिस पर चलने से मेरा कल्याण हो, मैं यह बात समझ रहा हूँ, परंतु जिस पर भी जो संतोष नहीं मिलता, आप लोग मेरी प्रार्थना को सुनकर उसके अनुसार उपदेश करें। जो मैं उत्तर देता हूँ इस दोष को आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि दुखी के दोष और गुण सज्जन लोग नहीं गिनते। पिताजी इंद्रपुरी में, सीता और श्री राम जी जंगल में, और मुझे राज्य करने को कहते हैं, इसमें आप लोग मेरा हित समझते हैं अथवा अपना कोई बड़ा कार्य। काव्य सौंदर्य। अलंकार। दुखित दोष में से एकानुप्रास। दूसरा, गुरुजन की आज्ञा बिना नानुचके सिरोधार्य करना ही धर्म है, प्रत्युत्तर पाप माना गया है। भरत प्रत्युत्तर करते हैं और उसका समाधान भी करते हैं, दुखित दोष गन गन ही न साधु, अर्थात दुखी व्यक्ति के विवेक की आशा करना व्यर्थ है। हित हमारे सियपति सेवकाई, सो हरि लिंध मातु कुटिलाई, मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही, शोक समाज राजु के ही लेखे, लखन राम सियपद बिनु देखे, बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी विरदी बिनु ब्रह्म विचारु, सरज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा, जाए जीव बिन देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई, जाओ राम पहि आयो सुदेहु, एक ही आंख मोर हित एहु, मोहिन पुकरि भल आपन चाहू, सो स्नेह जरता बस कहूँ, के कई सुअ कुटिल मती, राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज।
व्याख्या। हमारी भलाई तो श्री राम जी के टहल में थी, जिसे कैकेयी की कुटिलता ने हर लिया। मन में अनुमान कर मैंने देखा तो पाया कि संसार में इससे अतिरिक्त मेरे भलाई का अन्य कोई यत्न नहीं है। श्री राम लक्ष्मण और सीता का चरण न देखकर इस शोक से भरे राज्य की क्या आवश्यकता। कपड़ा न हो तो गहना किस काम का, और ब्रह्म का विवेक न हो तो विराग किस काम का। शरीर में रोग है तो विभिन्न प्रकार के भोग निष्फल है। भगवत भक्ति बिना जप योग किस काम का, जीवन रहे तो देह किस काम की। इसी तरह राम जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। यही मेरी एक विनय है कि श्री राम जी के निकट आने की आज्ञा मुझे दी जाए। हमको राजा बनाकर आप लोग अपना भलाई चाहते हैं तो यह प्रेम जर है। मैं कैकेयी का दुष्ट पुत्र श्री राम जी से विमुख होकर लज्जा रहित हूँ। मेरे जैसा नीच के राज्य में आप लोग आनंद चाहते तो यह मोह का प्राबल्य है। काव्य सौंदर्य अलंकार बादी बसन और सरजू शरीर में छेकानुप्रास, बादी विरति से विचारों में मृत्यानुप्रास। दूसरा सारे कर्म ज्ञान और उपासना का एकमात्र लक्ष्य भगवत चरणों में अविरत रहती है। इधर अयोध्या की परिषद भरत को राम ही से दूर करना चाहती है, इसलिए भरत को अत्यंत ग्लानि और क्षोभ हो रहा है। जय सियाराम। समाप्त।